एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तुझसे मांगते हैं खुदा, तू है जिंदा मसीह, सुन ले ये दुआ। आशीष तुझसे मांगते हैं खुदा, तू है जिंदा मसीह, सुन ले ये दुआ। सारे सृष्टि के मां तुझसे मांगते हैं खुदा, तू है जिंदा मसीह, सुन ले ये दुआ। तेरी स्तुति महिमा से मांगते हैं खुदा तू है जिंदा मसीह सुन ले ये दुआ सोचा मैंने बल प्रभु यीशु ने तब मुझसे ये कहा जब मैंने सोचा मैंने बल प्रभु यीशु ने तब मुझसे ये कहा सामर्थ्य प्रभु शक्ति देने वाला मैं यीशु मसीह तेरे साथ हूँ सामर्थ्य प्रभु शक्ति देने वाला मैं यीशु मसीह तेरे साथ हूँ तेरे आशीष तुझसे मांगते हैं खुदा तू है जिंदा मसीह सुन ले ये दुआ
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। ये हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। हमारे मनों को खोल दे पिता और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, विशेषकर मेरे हरेक श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे और मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, कि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है आराधना के दिन को बदलने का प्रयास। क्योंकि सब्बत सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में परमेश्वर की आराधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान ने इस पवित्र संस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एक चौतरफा युद्ध छेड़ दिया है। बाइबल कहीं भी इस आराधना के दिन को बदलने का अधिकार नहीं देती है जिसे परमेश्वर ने अदन में बनाया और सिनाई पर पुनर्स्थापित किया। अन्य मसीह रविवार पालनकर्ताओं ने स्वयं इसे मान्यता दी है। कैथोलिक धर्मगुरु जेम्स गिबन्स ने एक बार लिखा था, आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल पढ़ सकते हैं, पर आपको रविवार के पवित्रकरण को अधिकृत करने वाली एक भी पंक्ति नहीं मिलेगी। शास्त्र शनिवार के धार्मिक पालन को लागू करता है। एक प्रोटेस्टेंट ए टी लिंकन ने स्वीकार किया कि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि नया नियम स्वयं इस विश्वास के लिए अधिकार प्रदान करता है कि पुनर्स्थान के बाद से परमेश्वर ने शब्द के रूप में मनाए जाने वाले पहले दिन को नियुक्त किया है। उन्होंने स्वीकार किया किसी भी व्यक्ति के लिए जो मानता है कि संपूर्ण 10 आज्ञाएं नैतिक व्यवस्था के रूप में बाध्यकारी हैं, एक सेवंथ डे शब्द पालन करता बनना ही एकमात्र सिलसिलेवार कार्य करने का तरीका है। यदि बाइबल का कोई प्रमाण नहीं है कि मसीह या उसके शिष्यों ने आराधना के लिए निश्चित सातवें दिन को बदल दिया है, तो फिर किस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में मसीह उसके स्थान पर रविवार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम इसके बारे सीखें। रविवार के पालन करने का उदय कैसे हुआ? शब्द से रविवार में परिवर्तन धीरे धीरे आया। दूसरी शताब्दी से पूर्व मसीह साप्ताहिक रविवार की आराधना का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाण संकेत देते हैं कि उस शताब्दी के मध्य में कुछ मसीह स्वेच्छा से रविवार को आराधना के दिन के रूप में पालन करते थे, विश्राम के दिन के रूप में नहीं। रोम की कलीसिया, जो मुख्य रूप से अन्य जातियों के विश्वासियों से बनी थी, रोमियों 11:13, रविवार की आराधना के रुझान की ओर अग्रसर हुई। साम्राज्य की राजधानी रोम में यहूदी विरोधी प्रबल भावनाएं उठी, जो समय बीतने के साथ और भी प्रबल होती गई। इन भावनाओं की प्रतिक्रिया में उस शहर के मसीहों ने स्वयं को यहूदियों से अलग करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यहूदियों के साथ जुड़ने वाली कुछ साधारण प्रथाओं को छोड़ दिया एवं शब्द की श्रद्धा से दूर रविवार पालन की ओर बढ़ते हुए एक नए प्रचलन की शुरुआत की। दूसरी से पांचवी शताब्दी तक, जबकि रविवार का प्रभाव बढ़ रहा था, पूरे रोमी साम्राज्य में लगभग सभी जगह मसीहों ने तब भी सातवें दिन शब्द का पालन करना जारी रखा। पांचवी सदी के इतिहासकार सुकरात ने लिखा, संपूर्ण विश्व के लगभग सभी कलीसिया प्रत्येक सप्ताह के शब्द को पवित्र सहस्यों का उत्सव मनाते हैं। यद्यपि अलेक्जेंड्रिया व रोम के मसीहों ने कुछ प्राचीन परंपराओं के कारण ऐसा करना बंद कर दिया था, चौथी व पांचवी शताब्दी में कई मसीह शब्द व रविवार दोनों को आराधना करते थे। उस समय के एक और इतिहासकार सोजोमेन ने लिखा, कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग और लगभग हर जगह शब्द के दिन और साथ ही साथ सप्ताह के प्रथम दिन भी एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसी प्रथा जिसका रोम या अलेक्जेंड्रिया में कभी पालन नहीं किया गया। ये संदर्भ शब्द के पालन की अवहेलना करने में रोम की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। वे जो सातवें दिन की आराधना से मुड़ रहे थे, उन्होंने सप्ताह के किसी और दिन को ना चुनकर रविवार को क्यों चुना? एक मुख्य कारण यह था कि रविवार को मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। वास्तव में यह आरोप लगाया गया था कि मसीह ने उस दिन की आराधना को अधिकृत किया था। परंतु यह आश्चर्यजनक ही प्रतीत होता है कि दूसरी व तीसरी शताब्दी के किसी भी लेखक ने शब्द के स्थान पर रविवार के पालन के अधिकार के रूप में एक भी बाइबल पद का हवाला नहीं दिया। ना बर्नाबास, ना इग्नोसियस, ना जस्टिन, ना एरिनाइस, ना तुर्तिलियन, ना रोम का क्लेमेंट, ना अलेक्जेंड्रिया का क्लेमेंट, ना ओरेगन, ना सिप्रियन, ना विक्टोरिनियस, ना कोई अन्य लेखक जो उस समय के निकट जीवित थे जब यीशु जीवित था, यीशु से या बाइबल के किसी भी भाग से ऐसे निर्देश के बारे में जानते थे। रविवार को मूर्ति पूजक रोमियों की सूर्य पूजा की लोकप्रियता एवं प्रभाव ने निसंदेह आराधना के दिन के रूप में इसकी बढ़ती हुई स्वीकृति में योगदान दिया। प्राचीन दुनिया में सूर्य पूजा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रोमी धर्म के प्राचीन घटकों में से एक था। पूर्वी सूर्य पंथों के कारण दूसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभिक समय से रोम और साम्राज्य के अन्य हिस्सों में सोल इन्विक्ट्स का पंथ प्रमुख था। इस लोकप्रिय धर्म ने नए परिवर्तकों के माध्यम से प्रारंभिक कलीसिया पर अपना प्रभाव डाला। मूर्ति पूजकों में से मसीह बने लोग लगातार सूर्य की पूजा की ओर आकर्षित होते थे। इसका न केवल कलीसिया के धर्मगुरुओं द्वारा इस प्रथा की लगातार निंदा से संकेत मिलता है, बल्कि मसीह आराधना में सूर्य पूजा के महत्वपूर्ण प्रतिबिंबों से भी संकेत मिलता है। चौथी शताब्दी में रविवार के कानूनों की शुरुआत हुई। पहले रविवार कानून नागरिक रूप में जारी किए गए, फिर रविवार कानून धार्मिक चरित्र में आए। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 7 मार्च 321 ईस्वी को पहला नागरिक रविवार कानून घोषित किया। मूर्ति पूजक सूर्य उपासकों के बीच रविवार की लोकप्रियता को देखते हुए और जिस सम्मान के साथ कई मसीह इसे मानते थे, कॉन्स्टेंटाइन को उम्मीद थी कि रविवार को छुट्टी बनाकर वह अपनी सरकार के लिए इन दो निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन सुनिश्चित कर सकता है। कॉन्स्टेंटाइन के रविवार के कानून ने उसकी पृष्ठभूमि को सूर्य उपासक के रूप में दर्शाया, जिसमें यह लिखा था, सूर्य के पूज्य दिवस पर वेनेराबिली डाई सोलिस शहरों में रहने वाले लोग एवं मजिस्ट्रेट विश्राम करें एवं संपूर्ण कार्यशालाएं बंद रखी जाएं। गांव देहात में हालांकि कृषि कार्य में व्यस्त व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और कानूनी रूप से अपने धंधों को जारी रख सकते हैं। कई दशक पश्चात कलीसिया ने उसके उदाहरण का अनुसरण किया। लौदिकिया की परिषद लगभग 364 ईस्वी, जो एक विश्वव्यापी परिषद नहीं थी बल्कि एक रोमन कैथलिक थी, ने सबसे पहला कलीसियाई रविवारीय कानून जारी किया। कैनन 29 में कलीसिया ने निर्धारित किया कि मसीहों को रविवार का सम्मान करना चाहिए और यदि संभव हो तो उस दिन कोई कार्य ना करे, जबकि इसने सबत के दिन विश्राम करने की प्रथा की निंदा की। यह निर्देश दिया कि मसीहों को शनिवार को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए बल्कि उस दिन काम करेंगे। 538 ईस्वी में जिस वर्ष को 1260 वर्ष की भविष्यवाणी की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया था, रोमन कैथलिक की ऑर्लियंस के तीसरे परिषद ने एक कानून जारी किया जो कॉन्स्टेंटाइन से भी अधिक गंभीर था। उस परिषद के कैनन 28 का कहना है कि रविवार को भी कृषि श्रम को एक किनारे रखा जाना चाहिए ताकि लोगों को कलीसिया जाने से रोका ना जाए। हम पाते हैं परिवर्तन की भविष्यवाणी। बाइबल प्रकट करती है कि एक मसीह संस्थान के रूप में रविवार पालन की उत्पत्ति अधर्म का भेद में थी। इसे हम पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 में, जो पहले से ही पौलुस के दिन में काम कर रही थी। दानियल 7 की भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने आराधना के दिन के परिवर्तन के विषय में अपने पूर्व ज्ञान को प्रकट किया। दानियल का दर्शन परमेश्वर के लोगों व उसकी व्यवस्था पर आक्रमण को दर्शाता है। वह आक्रमणकारी शक्ति जो छोटे सिंह के द्वारा प्रदर्शित प्रकाशित वाक्य 13:1-10 में एक पशु द्वारा मसीह कलीसिया के भीतर एक बड़ा धर्म त्याग लाती है। चौथे पशु से उत्पन्न होकर रोम के पतन के पश्चात एक मुख्य सताने वाली शक्ति बनकर छोटी सी समय एवं व्यवस्था को बदलने दानियल 7:25 का प्रयत्न करता है। यह धर्म त्यागी शक्ति अधिकांश संसार को धोखा देने में बहुत सफल है, परंतु अंत में न्याय उसके विरुद्ध निर्णय देगा। पढ़िए दानियल 7:11-22-26। अंतिम क्लेश के दौरान परमेश्वर अपने लोगों की ओर से हस्तक्षेप करेगा और उन्हें छुड़ाएगा। यह प्रतिज्ञा हम पाते हैं दानियल 12:1-3 में। यह भविष्यवाणी मसीह धर्म के भीतर केवल एक शक्ति पर सही बैठती है। केवल एक धार्मिक संगठन है जो यह दावा करता है कि उसके पास दिव्य व्यवस्थाओं को संशोधित करने का विशेष अधिकार है। ध्यान दे कि पूरे इतिहास में रोमन कैथोलिक अधिकारियों ने क्या दावा किया है। 1400 ईस्वी के आसपास पेत्रुस दे एंसेरेनो ने दृढ़तापूर्वक कहा कि पोप दिव्य व्यवस्थाओं को संशोधित कर सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की है, और वह पृथ्वी पर परमेश्वर के स्थान पर अपनी भेड़ों को बांधने और खोलने की पूरी शक्ति के साथ कार्य करता है। इस आश्चर्यजनक कथन के प्रभाव को सुधार के दौरान प्रदर्शित किया गया था। लूथर ने दावा किया कि कलीसिया की परंपरा नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र जीवन में उसका मार्गदर्शक था। उनका नारा था सोला स्क्रिप्चरा, बाइबल और केवल बाइबल। रोमन कैथोलिक धर्म के सबसे प्रमुख रक्षकों में से एक जॉन एक ने इस बिंदु पर मार्टिन लूथर पर यह दावा करते हुए आक्रमण किया कि कलीसिया का अधिकार बाइबल से ऊपर है। अपने बाइबल के शब्द के स्थान पर रविवार पालन पर लूथर को चुनौती दी। एक ने कहा, पवित्र शास्त्र सिखाता है शब्द के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है आदि। फिर भी कलीसिया ने अपने स्वयं के अधिकार से शब्द को रविवार में बदल दिया है, जिसका तुम्हारे लूथर पास कोई पवित्र शास्त्र का प्रमाण नहीं है। प्रोटेस्टेंटवाद का मुकाबला करने के लिए पोप द्वारा आयोजित ट्रेंट के परिषद 1545 से 1563 में रेजियो के मुख्य धर्माध्यक्ष गैस्पारे डी फोसो ने इस विषय को फिर से उठाया। कलीसिया का अधिकार, उसने कहा, फिर पवित्र शास्त्र द्वारा सबसे स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, क्योंकि जबकि एक ओर तो वह कलीसिया उनकी सिफारिश करती है, उन्हें दिव्य घोषित करती है और उन्हें पढ़ने के लिए हमें प्रदान करती है, दूसरी ओर प्रभु द्वारा शास्त्र में सिखाए गए कानूनी उपदेश उसी कलीसिया के अधिकार द्वारा समाप्त हो गए हैं, क्योंकि वह कहता है कि वह व्यवस्था को पूरी करने आया है, ना कि उसे नष्ट करने, परंतु वे कलीसिया के अधिकारियों द्वारा बदल दिए गए हैं। क्या वह कलीसिया अभी भी इस स्थिति को बनाए रखता है? कैथोलिक सिद्धांत के कन्वर्ट कैटेचिम्स के 1977 के संस्करण में प्रश्नों और उत्तरों की यह श्रृंखला शामिल है। प्रश्न है, शब्द का दिन कौन सा है? उत्तर है, शनिवार शब्द का दिन है। प्रश्न, हम शनिवार के बजाय रविवार का पालन क्यों करते हैं? तब उत्तर है, हम शनिवार के बजाय रविवार का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि कैथोलिक कलीसिया ने शनिवार की पवित्रता को रविवार में स्थानांतरित कर दिया है। अपनी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक द फेथ ऑफ मिलियंस 1974 में रोमन कैथोलिक विद्वान जॉन ए ओब्रायन इस सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंचे, चूंकि शनिवार रविवार नहीं बाइबल में निर्दिष्ट है, क्या यह उत्सुकता की बात नहीं है कि गैर कैथोलिक जो अपने धर्म को सीधे बाइबल से लेने का दावा करते हैं और कलीसिया से नहीं शनिवार के बजाय रविवार का पालन करते हैं? हाँ, अवश्य है, अवश्य ही यह असंगत है। रविवार के पालन की प्रथा, उसने कहा, कैथोलिक कलीसिया के अधिकार पर टिकी हुई है, ना कि बाइबल में एक सुस्पष्ट पद पर। यह पालन मूल कलीसिया के अनुस्मारक के रूप में रहता है, जिसे गैर कैथोलिक संप्रदाय अलग हो गए, जैसे कोई लड़का घर से भाग रहा हो परंतु फिर भी अपनी जेब में माँ की तस्वीर या उसके बालों की लट लिए हुए हो। इन विशेष अधिकारों के दावे भविष्यवाणी को पूरा करते हैं एवं छोटे सिंह की शक्ति को पहचानने में योगदान देते हैं। शब्द के दिन की पुनर्स्थापना करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को आदेश दिया है। यशया 56:58 में परमेश्वर इज़राइल को शब्द सुधार के लिए बुलाता है। भविष्य में अन्य जातियों का उसकी बाहों में इकट्ठे होने की गरिमा को प्रकट करते हुए यशया 56:8 वह उद्धार की इस योजना की सफलता को शब्द को पवित्र रखने के साथ जोड़ता है। यशया 56:1-7 वह सावधानी पूर्वक अपने लोगों के विशिष्ट कार्य की रूपरेखा तैयार करता है। यद्यपि उनका उद्देश्य विश्वव्यापी है या विशेष रूप से ऐसे लोगों के वर्ग के लिए निर्देशित है जो विश्वासी होने का दावा करते हैं परंतु जो वास्तव में उसके उपदेशों से विमुख हो चुके हैं। यशाया 58:1-2। आत्मिक इसराइल का उद्देश्य प्राचीन इसराइल के समांतर है। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन तब हुआ जब छोटे सिंह की शक्ति ने शब्द को बदल दिया। अनंत काल के सुसमाचार के संबंध में प्रकाशित वाक्य 14:6-12 के संदेश की उद्घोषणा व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने और बढ़ाने के इस कार्य को पूरा करती है। सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए आह्वान के शब्दों में जिसने स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र और जल के स्रोते बनाए प्रकाशित वाक्य 14:7 परमेश्वर की अनंत व्यवस्था की चौथी आज्ञा का सीधा संदर्भ है। इस संदेश को देने से एक संघर्ष शुरू हो जाएगा जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी। इसका केंद्रीय मुद्दा परमेश्वर की व्यवस्था और शब्द के पालन की आज्ञाकारिता होगा। इस संघर्ष की स्थिति में सभी को यह तय करना होगा कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है या मनुष्यों की। यह संदेश ऐसे लोगों को उत्पन्न करेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसे हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 14:9-12 में। जो लोग इसे अस्वीकार करते हैं वे अंततः पशु की छाप प्राप्त करेंगे। तो आइए प्यारों, हमें चुनना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे कि मनुष्य की आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके संगति में रहे और उसके आशीष पाएं। आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके बल से परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करे और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरा आशीष चाहते हैं पिता। जैसे हमने तेरे वचनों को सुना, हमें तेरे वचनों को मानने के लिए मदद कर पिता। हमें तेरे आज्ञाओं के पीछे चलने के लिए मदद कर और हमें तेरे पवित्र आत्मा से पाप और बुराई से बचा कर परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।